हम सभी के बीच उपस्थित हैं आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दीदी जी ने 1954 में इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। ये कहा जाए कि साकार बाबा और मम्मा की आपने पालना ली है, दादियों के भी अंग संग आप खूब रहे हैं। साथ साथ दिल्ली शक्तिनगर क्षेत्रीय संचालिका एवं रशिया के राष्ट्रीय संचालिका हैं। आप महिला विंग के चेयरपर्सन भी हैं। आपके लिए कहा जाए कि आप सदा निश्चय बुद्धि, मृदु वाणी, सरल व्यवहार, अनेक आत्माओं को परमात्मा संदेश देने के आप निमित्त बनी हुई हैं। देश और विदेश में भी कई स्थानों पर आपने भ्रमण किया है। आपको कई अवार्ड और मोमेंटस से नवाजा गया है। ऐसी आदरणीय दीदी जी को मैं कहूंगी कि आज एकाग्रता की स्थिति और परिणाम, इस विषय को हम सभी के आगे स्पष्ट करेंगे आदरणीय चक्रधारी दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं तो तीन बार इसलिए कह रही हूँ कि एक चांस मिला आपको बोलने का, किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक दूसरा चांस भी मिल गया बोलने का, फिर भी थोड़ी व्यस्तता रही, तो तीसरा चांस मिला पुनः ओम शांति कहने का। क्योंकि यहाँ ओम शांति शब्द हमारा काफी प्रसिद्ध हो चुका है, कईयों ने नाम ही रख दिया है ओम शांति वाले, वो ब्रह्मा कुमारी भी नहीं कहते, ओम शांति वाले ही कह देते। लेकिन ओम शांति शब्द का उच्चारण, चाहे ब्राह्मण बच्चे हैं उनके मध्य भी ये बोला जाता है, और अगर कोई नई नई सभाएं होती हैं जहां लेक्चर्स के कार्यक्रम हैं, वहां भी ओम शांति शब्द का उच्चारण किया जाता है। इस उच्चारण से विशेष तात्पर्य यही है कि आत्मा स्वयं को पहचान कर अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाए और शांति दाता की बातों को शांत चित उन तरफ गौर दे सके और बात को अच्छी तरह समझ सके। क्योंकि आध्यात्मिक बातों को समझने या जानने के लिए मन की स्थिति का शांत होना बहुत जरूरी है। अगर मन की अवस्था शांत नहीं है, कई बार कोई द्वंद मन में चल रहा है, कोई चिंतन चल रहा है, किसी आए को देख रहे हैं, किसी गए को देख रहे हैं, किसी बैठने वाले को देखते हैं, किसी खड़े होने वाले को देख रहे हैं। बैठने वाला तो जब जगह मिलेगी बैठ जाएगा, खड़े होने वाले ने जाना है तो चला जाएगा, लेकिन हम अपनी मनोस्थिति को छोटी छोटी किसी भी हरकत को देख करके अवस्था को डोलायमान कर लेते हैं। और जब अवस्था हमारी शांत नहीं होती, एकाग्रचित नहीं होती, तो जो चीज हमें मिलनी चाहिए या अन्य मुझे देना चाहता है वो हम ले नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले इस चीज पर जरूर अटेंशन दें कि मन की स्थिति बड़ी शांत बना के रखे। चलो कोई परिस्थिति आपके आने के बाद यहाँ पीछे परिवार में आ भी गई, लेकिन आप सब वरदाता के वरदानी भूमि पर पहुंचे हुए हैं। अगर इस विश्वास से आप अपनी मनोस्थिति को हिलने नहीं देते और शांत चित बनाए हुए शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखते हुए आप अन्यों को भी सहयोग देते हो, तो मैं समझती हूँ कि आपकी पीछे आने वाली परिस्थिति भी स्वतः ही ठीक होती चली जाएगी। ये आपकी मनोस्थिति का फल है कि आपकी शांति कायम बनी रहेगी। और अगर छोटी सी बात आ भी गई और आप हलचल में आ गए तो आपकी परिस्थिति बड़ा रूप ले लेगी, और जब वो परिस्थिति बड़ा रूप ले लेती है तो हलचल पुनः हलचल में आ जाती है और हलचल होने शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ आप सब एक बहुत बड़े मिलन मेले में आए हुए। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि प्रातः अमृत वेले अगर तुम बच्चे मेरे से मिलन भी मनाते हो, चलो ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं बन पाई, लेकिन आप भागते हुए तैयार होके समय पर अगर मिलन मेले में प्रभु मिलन के लिए आप पहुंच गए, तो बाबा ने ये खास वरदान में कहा कि ऐसे मिलन मेले में पहुंचने वालों को ईश्वर पिता द्वारा वरदान प्राप्त हो ही जाएगा। जिस पर बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि कोई बड़े आदमी के पास जाते हैं तो बड़ा आदमी उन्हें खाली नहीं भेजना चाहता, वो आज के बड़े आदमियों की बात छोड़ दीजिए, जो सभ्य बड़े व्यक्ति होते हैं उनको होता है कोई आशा लेकर आया है, वो खाली नहीं जाएगा, उसे कुछ ना कुछ देकर ही भेजते। तो बाबा ने भी कहा कि अगर तुम बाबा के पास केवल मिलन मनाने के लिए भी समय पर उचित मात्रा में अपनी मनोस्थिति पर अटेंशन रखते हुए आप यहाँ बैठ भी गए, तो आपको दाता की तरफ से जो वरदान मिलना चाहिए वो अवश्य मिल जाएगा। कोई भी बच्चा यहाँ से खाली हाथ लौट नहीं पाएगा। आप देखो कितना भोला भंडारी है हमारा बाबा कि केवल तुम मिलने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें भोले भंडारी बन तेरी झोली अपने वरदानों से भरपूर कर दूंगा। आप सोचिए ऐसा भोला, ऐसा प्यारा और ऐसा कल्याणकारी पिता जिन बच्चों को मिल जाए उनका कितना बड़ा भाग्य है। हाँ, बाबा ने हम बच्चों को सदा एक बात कहते हैं कि बच्चे बाबा के बने हो, तन से बाबा के बनो, मन से बाबा के बनो, धन से बाबा के बनो, जो भी आपके अंदर विशेषताएं हैं खूबियां हैं उन सब सहित मेरे बन जाओ। अब बाबा जब कई बार ये कहता है तन से बाबा के बनो, अर्थात ये तन इस ईश्वर की सेवा में ज्यादा ना सही तो थोड़ा थोड़ा लगना अवश्य चाहिए। जब ईश्वर की सेवा में ये तन लगेगा तो बाबा का हम बच्चों को कहना है कि आपको तन की तंदुरुस्ती प्राप्त होगी। चलो ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा कर लो, लेकिन इस तन को ईश्वर की सेवा में लगाना जरूर। कई बाबा के बच्चे एक शब्द कहते हैं कि देवी जी ये तन दिल तो करता है कि ईश्वर की सेवा में लगा रहे, लेकिन तन काम का नहीं रहा। बाबा को भी मालूम है तमोगुणी समय है, तन में वो शक्ति नहीं रही है। और यहां तक कई बार कह देते हैं हमारे घर में बर्तन मांजने वाली, सफाई करने वाली, कपड़े धोने वाली हमने कोई ना कोई मेड लगा रखी है, ये तन को ईश्वर की सेवा में कैसे लगाएं? घर का ही काम नहीं हो पाता तो तन ईश्वर की सेवा क्या करेगा। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपका तन नहीं चलता है और काम नहीं कर सकता है तो चिंता या सोच नहीं करना। देखिए ख्याल रखना, जितना लग सकता है, जितना समय निकाल सकते वो लगा देना, और अगर ज्यादा नहीं लग सकता है तो कोई बात नहीं। अगर तन नहीं लगता, तन रोगी है, तन से इतना काम नहीं हो सकता तो तू धन से कुछ कर ले। ऐसा सुनकर फिर प्रश्न उठता है कि आज महंगाई का जमाना हो चुका है, रोज नए नए फैशन बदलते हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी घटती जा रही है। कितने भी आमदनी बढ़े लेकिन वो फिर कमी पड़ जाती है क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ चुके। इसलिए धन से चाहते तो बहुत है हम कुछ कर लें, जब स्वयं सर्वशक्तिवान आए हैं तो ये तन ये धन उस प्रभु सेवा में लग जाए। लेकिन आज धन इतना है नहीं जो हम कुछ कर सकें। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, मेरे बच्चे हो, मैं पिता हूं। अगर तेरे पास धन नहीं है और तू नहीं कर सकता तो ना कर, लेकिन जितना कर सकता है उसको जरूर इस्तेमाल कर लेना। क्योंकि सत्यनारायण स्वामी जी की कथा सुनते हैं, तत् सत् इस समय का वरदान है, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। है ही नहीं, झूठ नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा कहते चिंता नहीं करना, जो कर सको सो करो, जो नहीं कर सको नहीं करना। फिर बाबा कहते हैं तन भी तेरा काम नहीं करता, धन भी तेरे पास नहीं है, मन तो तेरे पास है, तो इस मन को मेरे में लगा दे। तब भी बच्चों का क्या जवाब निकलता है, यही तो सबसे बड़ी बात है, ये मन भी तो ऐसा पापी है, ना जाने कहां से कहां भाग जाता है। चाहते हैं लग जाए। अभी अभी आपने कहा आने वाले को ना देखो, जाने वालों को ना देखो, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि आने जाने वालों को चली जाती। ये मन काबू में नहीं आता है, मन को कैसे लगाएं? बाबा बच्चों को कहते हैं इसकी भी तो चिंता ना कर। अगर तेरा मन नहीं लगता है तो जितना लग सकता है उतना लगा दे, जो नहीं लग सकता खेचा तान नहीं करना, तनाव में ना आ जाना। मैं तुझे और सहज करके देता हूं। तब बाबा बच्चों को कहता है तेरा तन भी काम नहीं करता, धन भी इतना तेरे पास नहीं है, मन भी तेरे कंट्रोल में ज्यादा नहीं रहता, तो केवल इतना कह दे कि बाबा मैं तेरी हूं और तू मेरा है। इतना कह सकता है? अब आपने देखा सहज बात में कितनी ताली बजाई। अब मैं आपको ताली बतानी होगी, ताली बजेगी कैसे? बाबा मैं तेरी हूं तू मेरा है, और क्या कह रहा है? इतना ही तो कहना है। कहते हाँ ये तो मैं कह सकती हूं। बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी बात समझाते हैं और आज प्रातः बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया। ये कह सकना भी सरल नहीं है, क्योंकि बाबा शब्द बाबा ने खास कहा कि मेरी तिजोरी की चाबी है और चाबी तेरे हाथ में है, तुझे चाबी लगाकर केवल मेरी तिजोरी से जो चाहिए वो ले लेना है। लेकिन ख्याल रखना, इस चाबी को जरा पेट के अंदर डालना होगा, ऊपर ही ऊपर से चाबी घुमाओगे या दाएं घुमाने की जगह बाएं घुमा दिया तो चाबी अटक जाएगी, धन दौलत हाथ नहीं आएगा। अब आपने इस बात में ताली बजाई कि ये तो हम कह देंगे बाबा आप मेरा है तो मैं तेरा हूँ, आप मेरे हो मैं आपकी हूँ, ये बड़ा सरल है, लेकिन ये हृदय से निकलने वाली आवाज चाहिए। जब तक जिगर से निकलने वाली आवाज नहीं होगी तो ये ऐसे हुआ जैसे ताले में चाबी ऊपर ही ऊपर से घुमा रहे हैं, लेकिन जब तक चाबी ताले के पेट में नहीं जाएगी तब तक ताला नहीं खुलेगा और अंदर की पड़ी जायदाद नहीं मिलेगी। तो इतना कह देना तू मेरा है मैं तेरी हूँ, हृदय से आवाज आती है कि बाबा मैं तेरी हूँ, ओ प्यारे बाबा तू मेरा है। अगर मेरा बाबा बन गया तो सारा जहां मेरा बन गया, किस चीज में कमी रह सकती है? उस जहां को अपना बनाने की आप सदा ताली बजाओ, ये ताली बजाकर देखो। और बाबा की इस बात को भूल नहीं जाना कि ताली जिगर से बजनी चाहिए, ये ताली ऊपर ऊपर से नहीं बजनी चाहिए। आज तो उबासी आती है, मुंह खुला बाबा उबासी मार दी। अगर उठने में घुटनों में दर्द हो रही है और उठना पड़ गया तो बाबा कहकर उठ गए। कहते हम तो प्रतिपल प्रतिक्षण बाबा बाबा ही कहते रहते, वो तो कभी दर्द हो गई, कभी उबासी आ गई, कभी उठा नहीं गया, कभी काम किया नहीं गया, और आपने बाबा शब्द बोल दिया तो ये बाबा शब्द तिजोरी की चाबी का काम नहीं करेगा। ये चाबी ऊपर ही ऊपर से घूमेंगी, अंदर चाबी नहीं जाएगी। इसलिए बाबा कहता है कभी विचार करो, जिस बाप को मैंने अपना बनाया और जिस पिता ने मुझे अपना बनाया वो कौन पिता है, और मैं सचमुच उसके साथ मेरे कितने घनिष्ठ और कितने अविनाशी नाते हैं, कभी सोचो तो सही। ऐसा दाता पूरे कल्प में ना कभी मिला था ना कोई मिल सकता है सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग की चंद घड़ियों में। ऐसे बाबा को अगर जिगर से नहीं निकले मेरा बाबा, बाबा कहते तुम मेरा बाबा कहे, मैं तेरी सेवा के लिए प्रतिपल और प्रतिक्षण हाजिर हूं, तो सदा ये देख बाबा मेरे साथ। आज हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, मन की एकाग्रता तब तक नहीं हो सकती है जब तक हमारे अंदर की आवाज नहीं बाबा मेरा है और मैं बाबा का हूं। हर कर्म करने के निमित्त मैं हूं, लेकिन मेरे कर्म का साथी सहारा और सहयोग एक प्यारा बाबा है और कुछ नहीं है। ऐसा अंदर से आवाज आए, ऐसी आंतरिक भावनाएं हों जो भगवान तक पहुंचे। मैं देखती हूँ मनुष्य के मन की भावनाएं क्या नहीं कर सकती, और संकल्पों की दृढ़ता, एक बाबा मेरा है ये संकल्प की दृढ़ता। बाबा कहते हैं बाबा को उसी सेकंड तेरे सामने हाजिर होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने बाबा को मेरा बाबा कह दिया। जिस पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब अपनी आदरणीय दादी जानकी जी लंदन में थे, तो उस समय का आप सब ने, बहुतों ने सुना होगा, बहुत शायद ना भी सुना हो, कि जब एक वो व्यक्ति जिसने अपने मन के संकल्पों को इतना एकाग्र करना सीख लिया और इतना दृढ़ बनाना सीख लिया, तो वो दादी जी के साथ उसका एक हॉल में प्रोग्राम था और प्रोग्राम से पूर्व दादी जी के पास आया और मिला, तो ये कहा दादी ने कि आप अपने संकल्पों की बात करना जो कर सकते हो, मुझे जो ईश्वर ने संकल्प दिया है शांति प्रेम और शक्ति को प्राप्त कर प्रभु से सर्व आत्माओं को ये वाइब्रेशंस देना, वो मैं करूंगी। तो दादी का और उस व्यक्ति दोनों का एक ही मंच पर कार्यक्रम था, तो मैं उसके संकल्प की बात सुनाती हूँ कि उनके संकल्पों की दृढ़ता क्या नहीं कर सकती। तो उसने अपने हाथ में कुछ मूंग की दाल के दाने रख लिए और कुछ बच्चों को बुलाया सभा में से, क्या आओ बच्चे यहाँ आओ और मैं भी कहूंगा इन दानों को कि ग्रो, उग जाओ, इंग्लिश में बोलेगा उग जाओ, और जैसे मैं बोलूं ऐसे तुम भी बोलो उग जाओ और ये दाने उग जाएंगे। ये उसके अंदर के दृढ़ संकल्पों की दृढ़ता थी। और रियली वहां की वीडियो सब जगहों पर आई थी और हमने अपनी आंखों से देखा कि वो मूंग के दाने हाथ में रखे हैं और बड़ी दृढ़ता से एकाग्र होकर उन पर बोल रहा है, ग्रो ग्रो, और सारे बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं और ये फाइनल उम्मीद है सब बच्चों को भी कि उग जाएंगे। और उसके दो तीन बार कहने के बाद वो बहुत सुंदर दृश्य था कि वो मूंग के दाने धीरे धीरे उनमें से फूटना शुरू हुआ और थोड़ा थोड़ा उगने शुरू हो गए। ये हाथ में पकड़े हुए दाने, उनका ये परिणाम हुआ। और सभी सारी सभा में उसने पहले भी दाने दिखाए और उगने के बाद भी दाने दिखाए। फिर उसने कहा सभा में, कोई मुझे अपनी कार की चाबी दे दो, मैं इस संकल्प से आपकी चाबी को टेढ़ी कर दूंगा। सभी देने के लिए डरने लगे कि घर वापस जाना है हमने या चाबी टेढ़ी करा के बैठ जाना है। जब ये दाल के दाने उगा सकता है तो ये हमारी चाबी को भी टेढ़ी कर सकता है, तो कहा मैं टेढ़ी भी कर दूंगा फिर सीधी भी कर दूंगा। तो किसी की चाबी ली और चाबी लेके उसने केवल ऐसे ही देख रहा है बड़ी तेजी से, और यही दृढ़ता है कि ये टेढ़ी हो जाएगी। और वो धीरे धीरे चाबी सीधी थी, वो ऐसे ऐसे होने लगी, थोड़ी थोड़ी मुड़ने लगी और रियली वो चाबी काफी टेढ़ी हो गई। एक चम्मच भी ऐसा किया। ये मैं आपको क्यों सुना रही हूं कि आज मनुष्य अपने संकल्पों को एकाग्र करते हैं और एकाग्र करके वो किसी चीज पर अपनी उस एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग करते हैं और पब्लिक में वो प्रयोग उनकी एडवर्टीजमेंट का साधन बन जाता है कि कमाल है इनके संकल्पों की दृढ़ता और एकाग्रता। जिन संकल्पों की एकाग्रता से इन्होंने एक दानों को उगा दिया, चाबी सीधी को टेढ़ा कर दिया, चम्मच सीधे को टेढ़ा कर दिया, लेकिन जब दादी जी बैठे तो दादी जी ने सारे सभा में शांति की अनुभूति क्या होती है, आनंद की अनुभूति क्या होती है, दादी जी ने थोड़ा क्षण उन शब्दों से, शांति के शब्दों को लेते हुए थोड़ा सा स्पष्ट किया और स्पष्ट करके सबको शांति में बिठाया। सारे सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस थी, इतनी शांति थी सारी सभा में और लोगों ने अनुभव सुनाया कि आज हमने बहुत शांति का इस सभा में अनुभव किया। चलो मूंग के दाले उग भी गए, चाबी टेढ़ी हो भी गई, लेकिन मनुष्य आत्माओं को प्राप्ति क्या हुई? ये तो चमत्कार भी है और एकाग्रता की शक्ति का प्रभाव भी है, लेकिन बाबा बच्चों को कहता है कि अगर आप बच्चों का बाबा के साथ इतना संबंध जुट जाए और बाबा पर मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, तो उस एकाग्रता के आधार से आप विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति का सहयोग दे सकते। लेकिन जहां तक आज वो परिणाम देखते हैं, वो परिणाम इतना कॉमन नहीं हो पाया है। कारण क्या? स्वयं ही परिपूर्ण रूपेण शांत नहीं रह पाते, अपनी मनोस्थिति एकाग्र नहीं हो पाती, तो किसी को बेनिफिट कैसे दिया जा सकता है? जबकि ईश्वर द्वारा सिखाया गया योग एकमात्र वो योग है जिससे सर्व प्रकार की प्राप्तियां प्राणी मात्र प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज उस योग का प्रभाव जितना होना चाहिए उस अनुकूल अपनी मनोस्थिति में अनुभव नहीं कर पाते सब बच्चे, उसका कारण क्या? तो बाबा ने बहुत सुंदर आज भी दो शब्दों में कहा कि आत्मा हूं परमात्मा से संबंध जोड़ना है। अब मान लीजिए आप बाबा को याद करने बैठे हैं, लेकिन जब तक आपकी अपनी मनोस्थिति देह और देह की दुनिया से बिल्कुल उपराम और अपने स्वरूप की एकाग्रता में नहीं आई, तब तक आपका बाप के साथ जो कनेक्शन जुटे जिससे वो शक्तियां प्राप्त हों, वे शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती। उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पहले देह और देह की दुनिया से मन और बुद्धि इतना डिटैच हो जाए, जिसको बाबा कहते हैं मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जहां हूं, मुझे वो वैसा और वहां याद करो। इससे तात्पर्य क्या? सर्वप्रथम मुझे बाबा ने पहचान दी कि तू देह नहीं, देह तो केवल मात्र प्रकृतिकृत तत्वों से बना हुआ, तेरे प्रयोग का एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका तू इस्तेमाल करता है, लेकिन इस देह में विराजमान तू चैतन्य शक्ति आत्मा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है। कई बार बाबा कहते जुगनू कभी देखा है बच्चे? ऐसे जुगनू की न्याई चमकता हुआ आत्मा का स्वरूप है। कभी बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आपने कभी जलती हुई मोमबत्ती देखी है? कैसे उसके अंदर से जो चमकता हुआ पॉइंट है जिससे वो एक फ्लेम बनी है, वो पॉइंट कभी अंदर से देखा है आपने? कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे आकाश में चमकते हुए तारे को देखा है तुमने? सूक्ष्म से सूक्ष्म तू सितारे का स्वरूप अपने सामने ले आ, ऐसा चमकता हुआ तू दिव्य सितारा है। अब मैं स्वयं को स्वयं पूछूं कि मैं बाबा की याद में बैठी, लेकिन याद में बैठने से पूर्व मुझे मेरे अपने स्वरूप की स्मृति और उस स्वरूप की स्थिति इतनी क्लियर है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं चमक चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, कुछ नहीं और केवल मात्र एक चमकता हुआ सितारा, ये आपको ज्ञान के नेत्र से अपने स्वरूप को देखना है। ये चित्र आपके सामने बड़ा क्लियर आना चाहिए। जब तक आपको अपना चित्र क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप बाबा से संबंध नहीं जोड़ सकते। बार बार आपकी देह और देह की दुनिया और देह के धंधों में मन और बुद्धि चला जाएगा। ये चित्र पूरा आपके सामने चित्रित हो जाए, ये है मेरा चमकता हुआ स्वरूप। आप अपने आप से पूछो, आपको ये अपना स्वरूप इतना क्लियर दिखाई देता है? बाबा बच्चों को कहता है कि मन और बुद्धि, मन ने संकल्प किया कि मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है, बुद्धि ने स्वीकार किया कि यही मेरा स्वरूप है। तो जब मन और बुद्धि दोनों मेरे स्वरूप में एकाग्र हैं, तो मुझे मेरे स्वरूप के पिक्चर दृश्य वो इतना क्लियर सामने दिखाई दे कि मैं बहुत शांत चमकता हुआ इतना निर्मल दिव्य स्वरूप हूं। कितना प्यारा, कितना चमकता हुआ, कितना पावन मैं आत्मा ज्योतिर्मयबिंदु रूप हूं। जब इस प्रकार देह और देह की दुनिया से डिटैच स्टेज में आप अपने क्लियर स्वरूप को देख रहे हो, फिर अपने स्वरूप में कहां चलो? बाबा जहां है, जो है और जैसा है। फिर आत्मा स्वतंत्र है, किसी बंधन में अब बंधी हुई नहीं है। वो संकल्प के आधार से कहां सेकंड में जा सकती है? तो मन और बुद्धि के आधार से हम ज्योति देश में, जो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, एक सुनहरी सुनहरी प्रकाश है। स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपने घर की पहचान अपने शब्दों में, हमें समझने के शब्दों में सहज करके दी है। ये हमारी कल्पना या हमारा अनुमान नहीं है, ये हमको हमारे बाबा ने अपने स्वरूप की, अपने घर की पहचान दे दी। हम जैसे बाबा ने बताया वैसा ही अपने घर का नक्शा, एक प्रकाश ही प्रकाश, फर्टाइल लाइट जैसे फैली हुई लाइट है, और कैसे सुनहरी सुनहरी लाल लाल लाइट आप देखो मुझे दिखाई दे रही है। ज्ञान के नेत्र से दिखाई देनी चाहिए। कोई चीज को समझना देखना ही कहलाता है, और देखना समझना कहलाता है। ये दोनों एक दो से भिन्न नहीं है। और जब ही आप देखते हो इस प्रकाश में, तत्वों में, फिर देखिए मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा अब यहां विराजमान। आप देखिए, कभी अपने स्वरूप को देखिए, कभी चारों तरफ फैले हुए शांत वातावरण, वो प्रकाश के धाम को देखिए। अब मैं यहां आई हूं किस लिए? अपने प्यारे पिता से मंगल मिलन मनाने के लिए। फौरन मेरे सामने संकल्प करते ही मेरा चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, मेरा बाबा जो सर्व शक्तियों की किरणें बिखेरता हुआ मेरे सन्मुख विराजमान है, और मैं आत्मा, मन और बुद्धि का फोकस क्लियर स्पष्ट उसको देख रहा है, कैसे बाबा चमकता हुआ एक ज्योति बिंदु है और वो सब शक्तियां मुझ आत्मा को दे रहा है। जरा देखो, जब आपके सामने ये दृश्य नहीं होगा तो कोई ना कोई अन्य दृश्य आपको अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। चाहे कोई पास्ट की घटना का दृश्य हो या कोई आने वाले समय की घटना का कोई दृश्य होगा या कोई वर्तमान देखा हुआ कोई दृश्य होगा, वो आपके मन बुद्धि को बार बार खींचेगा। अगर आपका मन और बुद्धि क्लियर अपने स्वरूप को देखता हुआ अपने उस ज्योति देश में, शांत देश में बैठा है और सामने ज्योति बिंदु प्यारे बाबा को देख रहा है, वो ऐसे ही नहीं देख रहा, उसे मालूम है कि ये मुझ आत्मा का अजर अमर अविनाशी पिता है जिसके साथ मेरे संबंध थे, हैं और रहेंगे। ऐसा मेरा अविनाशी सर्व प्राप्तियों को प्राप्त कराने वाला ये मेरा पिता है। ऐसे प्यार से उनके सम्मुख बैठ उनकी शक्तियों का अनुभव करें तो आपको कोई भी अन्य दृश्य अपनी तरफ खींचेगा नहीं। और वो जो शक्तियां बाबा से आपको मिलेंगी, उन शक्तियों के आधार से जो आपके अंदर कमियां या कमजोरियां हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही ठीक होती चली जाएंगी। और जब वो कमियां कमजोरियां ठीक होती चली जाएंगी, आपका लगन, आपका प्यार, आपका झुकाव उस सर्वशक्तिवान की तरफ बढ़ता चला जाए। वो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कुछ समय निकाल कर योग लगाओ या थोड़ा अपना समय ईश्वर को देने का अभ्यास बढ़ाओ। ये कहना तब तक पड़ता है जब तक आत्माओं ने अनुभव नहीं कर लिया। और जब वो अनुभव कर लेती है उससे वो अनुभव छूट नहीं पाता। हमको याद आता है जब हम अपने साकार बाबा के साथ बैठते थे, कोई ऐसी भी बात हो जाती थी जिसमें सब हंसने लगते थे तो बाबा भी बच्चों के साथ हंसते थे, लेकिन एक सेकंड में पुनः बाबा जैसे उसी खुशी और उसी सर्वशक्तिवान की स्मृति की स्थिति में एकदम स्थिर हो जाते थे। हम बच्चों को उस हंसी को रोकने में टाइम लग जाता था, लेकिन बाबा एक सेकंड में अपनी उसी स्थिति में, जिसको ऐसा लगता था कि एक सेकंड के लिए भी बाबा बाबा से जुदा नहीं होना चाहता, एक सेकंड भी उससे अलग नहीं होना चाहता, सेकंड के लिए बातचीत में हंसा लेकिन सेकंड में स्टॉप दिया, फिर जैसे बाबा के साथ है, क्योंकि उसको वो रसना आ चुकी थी, वो रसना उससे छूट नहीं पा रही थी। आज हम बच्चों को बार बार अपने को चेतावनी देनी पड़ती है या अन्य हमको चेतावनी देते हैं, क्योंकि वो अनुभव परिपूर्ण रूपेण किया नहीं। और बाबा कहता है अगर ऐसे बच्चे बाप के संबंध में आ जाएं, तो उनके संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा। आज वो जो संस्कार हैं पुराने, समय प्रति समय जागृत होते हैं, इसका मतलब है कि वो भस्म नहीं हुए हुए, रिप्लेस नहीं हुए बाबा के दिव्य संस्कारों से, वो संस्कार परिवर्तित नहीं हुए लेकिन थोड़े दबे हुए और मौका देकर फिर उदय हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि विश्व की आत्माओं को संदेश फैलने में टाइम नहीं लगने वाला बच्चे, केवल मात्र आप बच्चों के संपूर्ण स्थिति के अनुभव के लिए सारी विश्व की आत्माएं इंतजार में हैं और स्वयं भगवान भी तुम्हारे इंतजार में है। कब मेरे बच्चे इस संपन्नता का एक्सपीरियंस करेंगे? और अनुभव को किसी प्राणी तक पहुंचाना बड़ा सहज है, क्योंकि अनुभव के आधार से अनुभव सहज हो जाता है। शब्दों के आधार से नहीं हो पाता है। इसलिए बाबा कई बार अपने सन्मुख बच्चों को बिठाकर उन्हें योग की ड्रिल कराता था, ताकि समानता का एक्सपीरियंस बच्चे अपने जीवन में कर सके। तो मैं देखती हूं कि एकाग्रता का मतलब क्या है, एक की तरफ ध्यान, बाकी सब तरफ से उपराम। अगर एक की तरफ ध्यान है, बाकी तरफ से परिपूर्ण रूपेण उपराम नहीं, बीच बीच में बुद्धि जाती है, तो ये एकाग्रता नहीं। हाँ, बाबा ने कहा था कि याद एक पारे मिसल है, एक पारे को भी हाथ में रखोगे तो टिकता नहीं है, बड़ा ऐसे हो जाता है। लेकिन जिन्होंने पारे को पकड़ने का प्रयत्न किया, उन्होंने पारे को इकट्ठा करके पारे का शिवलिंग बना डाला। हरिद्वार में एक बार शिवलिंग पारे का बनाया, जिसका इंदिरा गांधी उस समय उद्घाटन करने के लिए गई। एक तरफ कहते हैं पारा टिकता नहीं, लेकिन टिकाने वालों ने उसका एक शिवलिंग बना डाला। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं याद पारे मिसल है, लेकिन बच्चे अगर बाप के साथ संबंध और स्नेह है और आत्मा अपने स्वरूप और स्वमान में है, तो उस पारे को भी ऐसे पकड़ लेती है जैसे कि वो फिसलना नहीं, लेकिन वो चुंबकीय है, वो उसके बिना अलग उससे हट ही नहीं सकता। ऐसे बाबा के साथ हमारी प्रीत या हमारा प्यार होना चाहिए। ये हम अपने आप से देखें, क्योंकि अभी संगठन में आप सब आए हैं, तो संगठन कई बार एक सेंटर से 10 माताएं, 5 माताएं, 2, 10, 20 तो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, गप्पे मारते हैं, बातचीत करते हैं, कई खरीदारी करते हैं। ये तो सारा जीवन हमने किया, और यहां से जाने के बाद फिर भी ये कुछ करोगे। लेकिन यहां जो आप आए हैं, बार बार बाबा के सम्मुख जाओ, बाबा मुझे आपका सामीप्य प्राप्त होना चाहिए, मैं आपके मिलन मनाने के लिए बाबा यहाँ आई हूँ। जब बाबा ने कहा कि तू अमृत वेले मेरे मिलन मनाने आ जाएगी, तो बच्चे मैं तुझे वरदान दूंगा, और अगर आप यहाँ पर 3, 4, 5 दिन के लिए अपने घर परिवार का काम काज छोड़कर आप यहाँ आए और आप बाबा को कहते हो बाबा मैं आ गई, अब मुझे केवल आपके अलावा अपनी इस बुद्धि के योग को कहीं नहीं जाने देना, अब इस बुद्धि को आप मुझे पकड़ के रखना, बाबा मैं आपको पकड़ूंगी, आप मुझे पकड़ना। ऐसा बाबा के साथ संकल्पों की दृढ़ता होनी तो चाहिए, तब तो बाप पकड़ के रखेगा। जवा कि आप आए हो, ठीक है, आए हैं बट्टी करने के लिए, जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, जितना मिल गया इतना ही काफी है। नहीं, हम ब्राह्मण थोड़े में राजी होने वाले नहीं हैं, हम मालिक के बालक हैं। जब तक हम मालिक की पूरी जायदाद ना ले लें, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। असंतुष्ट नहीं, लेकिन पुरुषार्थ लगातार हमारा चलता रहेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है दुनिया वाले किसी भी एक पॉइंट पर अपने मन को एकाग्र करके कई सिद्धियां प्राप्त कर लेते। पहले ऋषि मुनियों की गाथाएं आती थी कि किसी भी पॉइंट पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, जिसको देखते थे अगर उसे भस्म करने की उनकी मनोमृत्ति होती थी, तो उनकी दृष्टि उसको भस्म कर देती थी। अगर किसी को रुलाने की स्मृति होती थी तो रुला देती थी, हंसाने की वृत्ति होती थी हंसा देती थी, क्योंकि उन्होंने संकल्पों को इतना एकाग्र किया था और अपने जिस इष्ट को इष्ट माना उस पर मन एकाग्र करके ये सिद्धियां प्राप्त की। बाबा बच्चों को कहता है दुनिया में तो कई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, और हम सब देखते हैं, कोई कहते हैं सूरज पर आप एकाग्रता लाएंगे तो आपको तीनों कालों की नॉलेज हो जाएगी। कोई कहते हैं नासिका के अग्रभाग की तरफ एकाग्र करो तो ये प्राप्त होगा, आप नाभि पर ध्यान एकाग्र करो तो ये प्राप्त होगा, आप कैंडल की फ्लेम पर एकाग्र करो तो ये प्राप्त होगा। बाबा बच्चों को कहता है कि स्थूल चीजों पर एकाग्र करके वो कितनी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, और तुम बच्चे स्वयं सर्वशक्तिवान पर अपना मन एकाग्र करें तो क्या तुम्हें सर्व सिद्धियां नौ निधियां ये सब प्राप्त नहीं हो सकती? बच्चे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है? हमें ये सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी, लेकिन ईश्वर के गुण, ईश्वर की शक्तियां और प्रभु प्राप्तियां जो जीवन में चाहिए वो हम ईश्वरीय प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए अपने बाबा पर मन और बुद्धि को एकाग्र करते, जिससे हमको सर्व प्रकार की प्राप्तियां प्राप्त हो सकती। किसी प्रकार का खजाना शेष नहीं रह जाएगा, ये ऐसे होना चाहिए ऐसे होता नहीं, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है, पता नहीं ये क्यों नहीं हो पा रहा। बाबा कहते क्या छोटे छोटे शब्द बाबा सुनता है। अरे बच्चे, बाप के बच्चे किस खजाने से वंचित रह सकते? दाता पर मन को एकाग्र करो। हम किसी प्रकार के, जैसे कहते हैं कि बहुत मनुष्य किसी सिद्धि को प्राप्त करता है तो सब तक अपनी सिद्धि का वर्णन करता है। हमको बाबा कहता है अगर कोई थोड़ी बहुत आपको सिद्धि प्राप्त होती भी है तो ख्याल रखना करामत कैर खुदाई है, करामात नहीं दिखाना। ये तो ईश्वर की प्राप्तियों को प्राप्त कर जन जन को उन प्राप्तियों से लाभान्वित करना, जिसका मैं कई बार एग्जाम्पल सुनाती हूँ, अपने आदरणीय दादी जानकी जी का ही, कि एक बार लंदन में सतगुरुवार का दिन था और दादी जी सबको अमृत जो भोग में रखा था जल, वो सबको अमृत पिला रहे थे और ऐसे ही वो लोटी पास रख के बैठे हुए थे, तो कहा अचानक एक युगल वहां आए। वो युगल थे, कभी वो ज्ञान में चले थे लेकिन माया का मुकाबला ना कर सकने के कारण उन्होंने शादी कर ली थी, और वो दादी जी से मिलने के लिए बहुत वर्षों के बाद आए। तो दादी जी को मालूम था कि इनका एक बेटा भी है, तो दादी ने कहा कि तुम आए हो लेकिन बेटे को क्यों नहीं लाए, क्योंकि संकोच तो आ सकता है। लेकिन दादी ने उनके संकोच को हटाने के लिए कहा कि आप आए, आप बेटे को क्यों नहीं लाए? तो उस पति पत्नी दोनों की आंखों से अश्रु धारा बह उठी और पत्नी ने फौरन बोला कि दादी जी, शायद हमने प्यारे बाबा की अवज्ञा की, उस अवज्ञा का हमें तो दंड मिला लेकिन हमारे बच्चे को भी मिला, हमारा बच्चा जन्म से अंधा है। तो उनका ये कहना और दुखित होना दादी के सामने, तो दादी ने कहा नहीं, जो भी हुआ सो हुआ, तुम बच्चे को लेकर के आना। तो उसी दिन ही वो बच्चे को जाकर ले आई। तो जब बच्चे को लाई तो दादी सबको जल पिला ही रही थी, तो दादी ने कहा मेरे पास लाओ इसको, तो दादी ने उसके मुख में जल डाला, पी गया और पीकर माँ के पास चला गया। कुछ क्षणों में पुनः माँ की गोदी से उठा और दादी की गोदी में आया, फिर दादी जी के पास आ गया और आके दादी के मुख को ऐसे करके जैसे कि पुनः जल मांग रहा है, छोटा था अभी, थोड़ा ही चलना जानता था, तो दादी ने उसके मुख में दोबारा जल डाला। तो दादी ने उसकी माँ से कहा कि तुम कहती हो ये अंधा है, अगर ये अंधा है तो ये तेरी गोदी से उठकर मेरे पास कैसे आ गया और मुझे फिर मुंह पर हाथ रखा करके उन्हें वो लोटी से जल पीने के लिए क्यों इशारा कर रहा है और पीने के बाद फिर ये तुम्हारी तरफ जा रहा है और तुम्हारे पास चला गया। तो अंधा बच्चा तो ऐसे नहीं कर सकता। तो कहा, दादी परसों ही डॉक्टर ने सर्टिफिकेट लिख कर दे दिया है कि बच्चा अंधा है और फाइनल सर्टिफिकेट मिल गया कि इसकी आंखें नहीं आ सकती। तीन ऑपरेशन इसके हो चुके हैं लेकिन आंखें नहीं आ सकती। दादी जी ने कहा कि तुम एक बार मेरे कहने से इसको फिर टेस्ट करा दो, उसी डॉक्टर के पास ले जाओ। तो उस डॉक्टर ने कहा, मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया तो बताया कि नहीं, एक बार हमारे बड़ों ने कहा है, एक बार पुनः चेक करो। तो डॉक्टर ने चेक किया तो कहा, परसों तक ये बच्चा अंधा था, आज ये बच्चा अंधा नहीं है। अब मान लीजिए अगर कोई ये कहे कि दादी जी ने अमृत पिलाया ना, तो अमृत पीने से उस बच्चे की आंखें आ गई, फिर तो दादी जी अमृत को लेके बैठ जाएं और सारे अंधे आते रहो और जल पीकर जाते रहो। अब आज मनुष्य थोड़ी सी महिमा को कितना स्वीकार कर लेता है, लेकिन हमारी आदरणीय दादियों के उस स्नेह और सहयोग से कितनों को कितने लाभ हुए होंगे, लेकिन उनका एक शब्द है, ये बाबा का सब कार्य है, ये इंसान का कार्य नहीं। मानो उस बच्चे की भोगना का पीरियड पूरा होने का समय आ गया, और जब उसकी भोगना का पीरियड पूरा होने का टाइम आया तो एक कोइंसिडेंट था कि माँ बाप का बच्चे को लेकर आना और उस दिन का सतगुरुवार होना और बच्चे को जल पिलाना, ये केवल मात्र एक कोइंसिडेंट, एक अकस्मात की घटना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि दादी जी ने जल पिलाया तो उससे उसकी आंखें आ गई, क्योंकि हमको याद है जब वो जन्मदिन मनाता था जब छोटा था तो मुझे इस बात का मालूम है कि कहता था, दादी जब आएंगे तभी जन्मदिन मनाऊंगा। और कुछ बड़ा हो गया हुआ था जब मैं लंदन में गई तो उसकी माँ ने कहा, दीदी यही बच्चा था जो अंधा हो गया था। मैंने कहा, अभी इसको नहीं कहो, अभी इसको कॉन्शियस आएगी कि मैं अंधा था, अभी कहना ठीक नहीं लगता है। लेकिन इस प्रकार की कोई सिद्धि को हम स्वीकार कर लें कि ये मेरे पिलाने से या मेरे कहने से या मेरे करने से हुआ, नहीं, ना कहने से ना करने से हुआ, लेकिन हर आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब होता है। और ठीक है, हिसाब किताब चुक तो किसी कारण से होता है। मान लीजिए मैंने 20 दिन योग किया और मैं योग वैसे करती नहीं थी इतना, लेकिन मुझे कहा कि आप 20-21 दिन योग करो, शायद ये चीज ठीक हो जाएगी, और 20 दिन योग करने से ठीक हो गया। तो मैं क्या कहती हूँ, तुम 20 दिन योग करो, मेरा काम ठीक हो गया था, तेरा भी हो जाएगा। अगर उसका नहीं हुआ तो कहेंगे ये लोग झूठ बोलते हैं, इनका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। और मैं कहूं कि मैंने इसको कहा था 20 दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं तो पीर बन गई, नहीं, मैं पीर फकीर नहीं बन सकती, ये तो हर एक के कर्म का खाता है। कहते हैं किसी एक के लिए वो कहावत से सुनाते हैं कि वो पंजाबी में शायद बोलते थे कि रोटियां गिन के पीरी पाई मनो, और अब चिद्दे तेरी वारी आई। एक बोल है ये, क्योंकि एक बच्चा था, वो अपने घर में था तो तंदूर में कोई रोटी बनाता है तो वो बार बार ऐसे करता है और फिर लगाता है, तो वो दूर बैठा हुआ गिनता रहा कितनी बार ऐसे किया कितनी बार ऐसे हुआ। तो उसने अपनी माँ को कह दिया कि 10 बार इन्होंने 10 रोटियां बनाई। तो माँ ने कहा, कैसे बनाई, तुम इतनी दूर बैठे तुम कैसे जान गया 10 रोटी बनाई। कहा, तुम जाके पूछ लो। और सचमुच पूछा तो उसने 10 ही रोटियां बनाई, तो सारे शहर में फैल गया। कह रहे उसका बेटा तो पीर बन गया, और वो तो घर बैठे दूसरे की कितनी रोटी बनी है वो बता देता है। तो कहते हैं एक बार उस पीर की आवाज फैल गई, और राजाओं के पहले राज्य छोटे छोटे होते थे, तो राजा ने कहा मेरे देश में एक पीर बन जाए जो घर बैठे दूसरे की रोटियां बता दे। तो उसने राजे ने अपने पास बुलाया, और बुलाकर कहते हैं उसने मुट्ठी बंद की थी, और बच्चे का नाम इसमें था, बच्चे का नाम वही था चिड्डा, टिड्डा से टिड्डा नाम नहीं, कॉकरोच होता है उसको कोई पंजाबी में टिड्डा कहते हैं। तो राजा ने दो मुट्ठियां बंद की हुई थी और बच्चे से पूछा कि बेटा तुम बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो बेटे ने उसका हाथ पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के कहा कि रोटी गिनकर पीरी पाई, अब टिड्डे तेरी बारी आई। अब वास्तव में राजा ने अपनी मुट्ठी में वो टिड्डा ही रखा हुआ था। अब वो राजा बड़ा खुश हो गया कि सचमुच ये तो पीर फकीर हो गया। अब उसने तो अपने नाम के लिए कहा कि ये टिड्डे तेरी वारी आई, अब तेरा नंबर आया कि तेरी पीरी फकीरी निकल जाएगी। तो बाबा बच्चों को कहता है कि यहाँ किसी प्रकार की पीरी फकीरी नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, अपने जीवन को दिव्य बनाओ। आपका निजी अनुभव है, किसी को अपने अनुभव सुनाओ, उनको अनुभवी बनाने की कोशिश करो, लेकिन ये ना कहो कि जैसे मेरा हुआ तेरा भी ऐसे हो जाएगा, और अगर उसका ना हुआ तो उसकी डिसर्विस हो जाएगी। इसलिए ख्याल रखना एक बाबा से सबका संबंध जुट जाए, और बाबा से सर्व आत्माओं को सर्व प्राप्तियां हो जाए, ऐसी मनोभावना अगर आपकी बनी रहेगी तो बाबा का बल और आपकी मनोभावना किसी भी आत्मा की ग्रहचारी को हटाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इसलिए सदा एकाग्रता की स्थिति बना के रखना और बाबा से वरदान प्राप्त करते रहना। ओम शांति।